थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
ऐसा गिरियारोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई। जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं, जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं। कितनी लिख सकते हैं हम प्रभु तुम्हारी अच्छाई। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई। सहारे चांद तारे कहीं रोशनी से अपने रोशन कर दिया। जहां मिट्टी उठाकर तुमने बनाया एक नया इंसान। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई। ऐसा गिरियारोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई। प्यार से तुमने भर दी, गुलशन में फूल खिले पावन हुई धरती। शांति का संदेशा चारों ओर जा बसा, खोजती इंसान को और आए तुम बन के मसीहा। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई। ऐसा गिरियारोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई। जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं, जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं। कितनी लिख सकते हैं हम प्रभु तुम्हारी गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई ऊंचाई।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से अपने परिवार और मित्रों के साथ परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको फिर से बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर के दास जकरिया को परमेश्वर ने दर्शन के माध्यम से अपने वचन उस तक पहुंचाए हैं। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है ताकि हम आपके पवित्र और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम जकरिया नबी की पुस्तक में से उन दर्शन की बातों को सीख रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, तो आपसे हम विनती करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग स्थानों पर आपके वचन को सुनने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं, आप अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि प्रत्येक जीवन आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा स्पर्श किया जाए, हर एक जीवन आप में बदलने पाए, सत्यता को जानने पाए। उनके जीवन के हर एक तकलीफों को आप जानते हैं, उनके जीवन के हर एक जरूरतों को आप जानते हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें, उनकी सहायता करें, आज के अध्ययन पर भी अपनी आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब जकरिया नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में देखा है कि सातवें दर्शन में जकरिया ने देखा कि एक दीप दान है जिसमें सात नालियां हैं और उसके दोनों ओर एक एक जैतून का वृक्ष है। दीप दान इसराइल का प्रतीक है और वे दो जैतून के वृक्ष जरुबाबेल और यहोशू हैं। जरुबाबेल दाऊद का वंशज था जिसे इसराइल का अधिपति ठहराया गया था और यहोशू महायाजक था। दोनों इसराइल के अगुए थे। जैतून का तेल जिससे दिए जलते थे वह परमेश्वर के आत्मा का प्रतीक है और दीपदान की ज्योति इसराइल द्वारा परमेश्वर की गवाही है। तो मेरे मित्रों, हम आगे बढ़ते हुए आज जकरिया के पुस्तक चार अध्याय उसके चार पद को पढ़ेंगे। चार अध्याय के चार पद में लिखा है, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जकरिया संकोच नहीं करता है, अतः उसने पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? अर्थात मैं इन्हें देखता तो हूं परंतु उनका अर्थ नहीं समझता कि ये क्या है। तब आगे लिखा है जकरिया चार उसके पांच पद में, जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। मेरे मित्रों, स्वर्गदूत का उत्तर निहितार्थ प्रकट करता है। कि जकर्याह को उसका अर्थ समझना चाहिए। वह दीप दान देखता है तो इसका अर्थ क्या है, परंतु जकर्याह कहता है, हे मेरे प्रभु, मैं वास्तव में नहीं समझ पा रहा हूं कि इसका अर्थ क्या है। जैसे हम में से आज कई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं परंतु समझ नहीं पाते हैं। जकर्याह 4 उसके 6 पद में आगे लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुबाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे मित्रों, ध्यान रखें, यह जरुबाबेल के लिए परमेश्वर का संदेश है। जरुबाबेल कौन था? वह यरूशलेम का अधिपति था। यहोशु महायाजक था। जरुबाबेल यहूदा के गोत्र का प्रधान था। एज्रा की पुस्तक में लिखा है कि वह 70 वर्ष की बेबीलोन की बंधुआई के बाद पहले दल को लेकर के स्वदेश लौटा था। जरुबाबेल का उत्तरदायित्व था कि वह मंदिर का पुनः निर्माण करे, परंतु बाहरी बाधाओं के कारण और आंतरिक हताशा के कारण वे मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने में सफल नहीं हुए थे। अतः परमेश्वर उससे उत्साहित करने के लिए यह दर्शन देता है। इसमें उसके लिए तो संदेश था ही, परंतु हमारे लिए भी एक महान सिद्धांत है। लिखा है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। बल और शक्ति दो बड़े रोचक शब्द हैं। बल से अभिप्राय है मानवीय संसाधन, जैसे शारीरिक बल, मानवीय क्षमता, योग्यता और पैसा। शक्ति का भी यही अर्थ है, शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्ति। अतः इसका अर्थ है, न तो बाहुबल से, न बुद्धि से, परंतु मेरे आत्मा से होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यह यरुबाबेल के लिए महान प्रोत्साहन की बात थी। परमेश्वर ने उससे कहा कि उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति और उनका बाहुबल मंदिर के पुनः निर्माण में काम नहीं आएगा, यह काम परमेश्वर का आत्मा करेगा। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर का आत्मा हमारी सेवा में नहीं है तो परिणाम कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने काम के लिए मनुष्य की बुद्धि और बल का उपयोग नहीं करता है। हम बुद्धिमान प्रचारकों की प्रशंसा करते हैं जो बहुत ही अच्छा उपदेश हमें सुनाते हैं, परंतु ये बुद्धिमान प्रचारक यदि गलत दिशा पकड़ लें तो परमेश्वर के लोगों में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे कभी कभी चुप खड़े रह करके सुनना होता है कि ये अच्छे व्यक्तित्व और आकर्षक मनुष्य श्रोताओं को मोह लेते हैं, परंतु परमेश्वर मनुष्य की बुद्धि और क्षमता को काम में नहीं लेता है। वह कहता है, मेरे आत्मा के द्वारा होगा। अतः महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रयास फूस का ढेर है। वास्तविक कार्य तो परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा करता है। अब भविष्य का विचार करें तो यह बात प्रभु राज की है, जब परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा, न कि मनुष्य का बल और उसकी बुद्धि। डेविड वेरन की व्याख्या है जो इस प्रकार से है, यह परमेश्वर की ज्योति में होगा कि उसके आत्मा के तेल के माध्यम से उन पर बहुतायत से चमकेगी और संपूर्ण पृथ्वी के राष्ट्रों को ज्योतिर्मय करने के लिए इसराइल का दीप दान 7 गुना अधिक तीव्रता से चमकेगा। यह एक अति उत्तम बात है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं कि जकर्याह के युग में स्वदेश लौटे इसराइलियों को ऐसे महान प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, क्योंकि उनका विरोध बहुत अधिक होने के कारण उनके मन में शंका और भय समाया हुआ था। वे डरे हुए थे। अतः परमेश्वर ने उसे यह दर्शन दिखाया। यह जरुबाबेल के प्रोत्साहन के निमित्त परमेश्वर का वचन था। आज भी जब हम अपने जीवन में डरे और सहमे रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा हमें साहस देता है, धैर्य देता है, हिम्मत देता है, ताकि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर मेरे साथ है। जकर्या 4 अध्याय के 7 पद में आगे लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुबाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। पहाड़ विरोध का प्रतीक है। इस दर्शन से उन्हें प्रोत्साहन मिला कि जरुबाबेल विरोध के पहाड़ को हटा लेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 20 पद में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जाए, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। प्रभु यीशु किसी पहाड़ के बारे में नहीं कह रहा है। पहाड़ से उसका अभिप्राय था परमेश्वर के काम में आने वाली बाधाएं। यह दर्शन यही परिदृश्य को प्रकट करता है। असंभव स्थिति के उपरांत भी परमेश्वर का मंदिर बनकर ही रहेगा। लिखा है, और वह चोटी का पत्थर या पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। चोटी का पत्थर वह पत्थर होता है जो इमारत के पूरा होने पर लगाया जाता था। कहने का अर्थ यह है, मंदिर निर्माण का कार्य इसराइल की पुकार और हर्षनांद के साथ पूरा होगा। उन निराश इसराइलियों के लिए यह कैसा महान उत्साहवर्धक वचन है। मेरे प्रियो, हमारे निराशाओं में परमेश्वर का वचन हमें उत्साह देता है, साहस देता है, धैर्य देता है। यदि आज आप निराश हैं, परेशान हैं, इस बात को जाने कि परमेश्वर का वचन आपसे यही कहता है कि आपके साथ परमेश्वर है। जकर्या 4 उसके 8 और 9 पद में आगे हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुबाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा, तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा थी कि मंदिर निर्माण का कार्य जरुबाबेल के रहते हुए ही पूरा होगा। इस संदर्भ में मुझे फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद की प्रतिज्ञा का स्मरण होता है। लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जी हां, परमेश्वर जरुबाबेल से कह रहा था कि जब उसने मंदिर की नींव डाली थी तब वह उसके साथ था, और जब वह मंदिर की छत डालेगा तब भी वह उसके साथ होगा। जकर्या 4 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहूल को जरुबाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। लिखा है, किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। मैं बता सकता हूं किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। हम छोटी बातों के दिन को तुच्छ समझते हैं। हम बड़ी बड़ी बातों से प्रभावित होते हैं। हम अपने मसीह सेवा कार्य को बड़े बड़ी कलीसियाओं में और बड़ी बड़ी जनसभाओं से आंकते हैं, परंतु मुझे अधिकाधिक विश्वास होता जा रहा है कि परमेश्वर शांत स्थानों में निखरता है और कार्य भी करता है। मैं जब कहता हूं कि हमें छोटी बातों के द्वारा तुच्छ नहीं जानना चाहिए या समझना चाहिए, तब मैं वास्तव में अपने आप को भी कह रहा हूं। यहां लिखा है, यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहूल को जरुबाबेल के हाथ में देखेगा। साहूल से सुनिश्चित किया जाता है कि दीवार सीधी बन रही है या नहीं। यह साहूल राजमिस्त्री के पास होता है। यहाँ पर लिखा है, अपनी इन सात आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके, अर्थात परमेश्वर सब कुछ देखता है। वह संपूर्ण पृथ्वी का नियंत्रण करता है। आप जहां भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर की निगाह में हैं। वह आपका भी न्याय करेगा। जकरिया 4:11-13 पद में आगे लिखा है, तब मैंने उससे पूछा, ये दो जैतून के वृक्ष क्या हैं, जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं, जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती हैं? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या हैं? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। जकरिया ने फिर स्पष्टीकरण मांगा तो सरदूत ने कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या हैं? इसका अर्थ है कि उसे जानना आवश्यक था, परंतु वह नहीं जानता था। आइए हम जकरिया के पुस्तक 4 उसके अंतिम पद 14 पद को पढ़ें। लिखा है, तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं, जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। इन दोनों में परमेश्वर का आत्मा वास करता था, जरुबाबेल और महायाजक यहोशु। जैसा कि हमने देखा है, यहोशु को स्वच्छ वस्त्र पहनाकर शुद्ध किया गया है, और अब परमेश्वर के समक्ष स्वच्छता के साथ खड़ा किया गया है। इस्राएल ने पाप स्वीकार करके परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करके अब शुद्ध हो गए हैं। अब वे मसीह की धार्मिकता में हैं, अतः वे आत्मा से भर गए हैं और अब परमेश्वर द्वारा काम के लिए वे जा सकते हैं। मेरे मित्रों, यह संदेश हमारे लिए है। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, परंतु उसकी कुछ शर्तें हैं। पहला है, इफिसियों की पत्री 4:30 पद में लिखा है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हमारे पाप के कारण पवित्र आत्मा हम में वास नहीं कर पाता है, अतः हमें शोधन की आवश्यकता है। दूसरी शर्त है, 1 थिस्सलुनीको 5:19 पद में, आत्मा को ना बुझाओ। जी हाँ, आत्मा को बुझाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, और जो परमेश्वर की इच्छा के बाहर है, उसे परमेश्वर काम में नहीं ले सकता है। तीसरी शर्त है, गलातियों की पत्री 5:16 पद में, आत्मा के अनुसार चलो, अर्थात आत्मा के आधार पर चलें, उस पर निर्भर करें। हमारे लिए जो काम संभव नहीं, उसके लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर करें। दीपदान का दर्शन जकरिया के युग में स्वदेश लौटने वाले इसराइलियों के लिए प्रोत्साहन था। जी हाँ, यह हमारे लिए भी है, और उस दिन के लिए भी है जब परमेश्वर अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलेगा। आज तो ऐसा दिखाई नहीं देता है, परंतु प्रभु राज में होगा जब वह सब पर अपना आत्मा उंडेलेगा। यह अभी भविष्य की बात है, परंतु यह निश्चय ही हमारे जीवन में पूरी होगी। मेरे मित्रों, जिस प्रकार परमेश्वर यहोशु और जरुबाबेल को अपने महिमा के लिए प्रयोग में ले रहा है, वैसे ही आज वह हमारे जीवन को भी प्रयोग में लेना चाहता है। वह हमें शुद्ध करना चाहता है, वह हमें उत्साहित करना चाहता है, और वह कहना चाहता है कि न तो बल से, न शक्ति से, न सामर्थ्य से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। जी हाँ, वह अपनी आत्मा के द्वारा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। मेरे श्रोता मित्रों, क्या आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? तो क्या आप उसके वचन को मानने के लिए तैयार हैं? मेरे श्रोता मित्रों, यदि आप परमेश्वर से दूर हैं, भटके हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी ओर लौट आएं, अपने देश में लौट आएं, उसके पास लौट आएं, अपने पापपूर्ण जीवन को छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में शुद्धता और पवित्रता को देखना चाहता है। जो आपके द्वारा संभव नहीं है, और यही कारण है कि आपको यीशु के पास आने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज इस वचन के प्रकाशन में एक सही निर्णय अपने लिए लें, ताकि आप परमेश्वर के आशीषों को अधिकाई से प्राप्त कर सकें। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने नई बातों को सीखा है, और अवश्य ही आप परमेश्वर की निकटता में बने रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।
संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे।
उनके हाथों में दो शस्त्र थे, अहिंसार थे जिनके नाम थे।
उनके हाथों में दो शस्त्र थे, अहिंसा और प्रेम जिनके नाम थे।
हिंसा न करो ये उनका वचन, प्यार से जीतो तुम सबका मन।
ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे, प्यार ही प्यार सिखाने हमको।